अक्सर जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जलकर राख हो रहा है।
हाँ बिल्कुल, इंसान यही सोचता है कि बस ये तबाही है।
सही कहा, मतलब इंसान सोचता है कि इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर किया गया है कि आग सिर्फ चीजों को जलाती ही नहीं
ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है।
है ना? क्योंकि अगर किसी सुनार से पूछा जाए तो वो बताएगा कि असली सोना तो आग में तपकर ही निखरता है। आग उसे नष्ट नहीं करती, बल्कि उसके अंदर की सारी अशुद्धियों को जलाकर उसे शुद्ध कर देती है।
बिल्कुल सही बात है।
तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विचार को केंद्र में रखने वाले हैं। आज के हमारे स्रोत डॉक्टर जॉन ओसवर्ल्ड द्वारा यशाया यानी प्राचीन ग्रंथ आइजाया के अध्याय 41 से 43 पर दी गई शिक्षाओं और उनके विस्तृत विश्लेषण पर आधारित हैं।
और ये विश्लेषण सच में बहुत गहरा है।
बिल्कुल, हमारा मिशन ये डीकोड करना है कि हजारों साल पहले लिखे गए ये ग्रंथ न्याय, अनुग्रह जिसे हम ग्रेस कहते हैं, और इंसान द्वारा गढ़ी गई मूर्तियों या व्यवस्थाओं की सीमाओं जैसी जटिल अवधारणाओं को कैसे समझाते हैं। हम इन ऐतिहासिक स्रोतों के भीतर छिपे उस ज्ञान को बाहर निकाल रहे हैं जो आज के समय में भी किसी भी इंसान के लिए बहुत प्रासंगिक है।
हाँ, और इस विषय की गहराई वाकई हैरान करने वाली है। मतलब खासकर जब हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं जहां से ये ग्रंथ बात कर रहा है।
तो उस समय के माहौल के बारे में आपका क्या ख्याल है?
देखिए, डॉक्टर ओसवर्ल्ड अपने विश्लेषण में बहुत स्पष्ट करते हैं कि उस समय का समाज एक बहुत बड़े झटके से गुजर रहा था। हम बात कर रहे हैं बेबीलोन या बाबुल के निर्वासन की,
जो कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी।
बिल्कुल, प्राचीन इसराइल के लोगों को उनके घर से, उनकी जड़ों से उखाड़कर एक अनजान और दुश्मन साम्राज्य में भेज दिया गया था।
और उस समय के लोगों के लिए ये किसी दुनिया के अंत जैसा ही रहा होगा। मतलब उनका घर, उनका समाज, उनकी पूरी पहचान ही छिन गई।
हाँ, रातों रात सब खत्म।
तो स्वाभाविक सी बात है कि उस स्थिति में किसी को भी यही लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, या उनके रक्षक ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया है।
एकदम सही कह रही हैं आप। निर्वासन का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकट था।
आध्यात्मिक संकट, वो कैसे?
देखिए, प्राचीन दुनिया में ना, अगर कोई देश युद्ध हार जाता था तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जाता था कि हारने वाले देश के देवता कमजोर हैं।
ओह अच्छा, मतलब ताकत का सीधा कनेक्शन देवताओं से था।
बिल्कुल, इसलिए इसराइल के लोगों की पहली सोच यही थी कि उनके परमेश्वर ने उन्हें हारने दिया और अब उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है।
ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति है।
हाँ, लेकिन स्रोत में डॉक्टर ओसवर्ल्ड उस ग्रंथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरोधाभास को सामने लाते हैं। ग्रंथ के अनुसार भगवान का उद्देश्य उन्हें नष्ट करना था ही नहीं।
अच्छा।
हाँ, उस भयानक स्थिति में भी भगवान उन्हें चुने हुए और दोस्त कहकर संबोधित करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर किसी इंसान को उसके घर से बेदखल कर दिया जाए, उसे दुश्मनों के बीच फेंक दिया जाए और वो भयानक दर्द से गुजर रहा हो, तो वो ये कैसे मान ले कि उसे त्यागा नहीं गया है?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है जो कोई भी इंसान पूछ सकता है।
मतलब ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कोई बहुत ही सख्त कोच अपने किसी एथलीट को ऐसी कड़ी और दर्दनाक ट्रेनिंग से गुजारता है जो देखने में बिल्कुल एक सजा जैसी लगती है। एथलीट सोचता है कि कोच उससे नफरत करता है, वो उसे तोड़ना चाहता है।
हाँ, उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है।
बिल्कुल, लेकिन असल में कोच उसे एक महान खिलाड़ी बनाने के लिए उसकी सीमाओं को पार करवा रहा होता है, उसकी कमजोरियां को दूर कर रहा होता है।
और इसी कोच वाली उपमा को अगर हम ग्रंथ के ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो डॉक्टर ओसवर्ल्ड समझाते हैं कि ये निर्वासन एक सजा से ज्यादा शुद्धि की एक प्रक्रिया थी।
शुद्धि की प्रक्रिया, जैसे हमने शुरुआत में सोने और आग की बात की थी।
एकदम वही बात। ग्रंथ में ही यशाया के होठों पर जलता हुआ कोयला रखे जाने का एक पुराना दृश्य है। उस जलते हुए कोयले से असहनीय दर्द तो जरूर हुआ होगा, लेकिन उसका मकसद यशाया को जलाना नहीं था,
बल्कि उसे शुद्ध करना था।
बिल्कुल, उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए शुद्ध करना था। और यहीं पर अनुग्रह यानी ग्रेस की असली तस्वीर साफ होती है।
ग्रेस की तस्वीर, वो कैसे?
देखिए, डॉक्टर ओसवर्ल्ड कहते हैं कि उस समय लोगों को लगता था कि बाबुल के साम्राज्य ने अपनी सैन्य ताकत से उन्हें बंदी बना लिया है, लेकिन ग्रंथ दावा करता है कि बाबुल ने उन्हें जबरदस्ती बंदी नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने खुद उन्हें वहां भेजा है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है।
अरे वाह, ये सच में पूरी कहानी को ही पलट देता है।
बिल्कुल पलट देता है,
क्योंकि अगर बाबुल ने उन्हें अपनी मर्जी से हराया होता तो इसका मतलब होता कि बाबुल के देवता ज्यादा ताकतवर साबित हो गए।
सही बात है।
लेकिन अगर ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था तो इसका मतलब है कि नियंत्रण अभी भी उसी ब्रह्मांडीय शक्ति के पास था जिसने उन्हें चुना था।
यही ग्रंथ का मुख्य तर्क है। और चूंकि ये सवाल उठना लाजमी था कि असली नियंत्रण किसके पास है, तो स्रोत हमें एक बहुत ही नाटकीय दृश्य की ओर ले जाता है।
नाटकीय दृश्य मतलब कुछ ड्रामा?
हाँ, बहुत बड़ा ड्रामा। डॉक्टर ओसवाल्ट इसे एक ब्रह्मांडीय अदालत या कॉस्मिक कोर्टरूम कहते हैं।
कॉस्मिक कोर्टरूम सुनने में तो किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है।
है भी वैसा ही। इस अदालत में परमेश्वर असल में बाबिल की मूर्तियों और उस समय के सभी झूठे देवताओं को पेश होने की चुनौती देते हैं। वे बाकायदा एक मुकदमा दायर करते हैं।
एक मिनट, क्या निर्जीव मूर्तियों को चुनौती देना थोड़ा अजीब नहीं है?
अजीब तो लगता है, अगर हम आज के नजरिए से देखें।
वही तो, वे तो बस पत्थर या लकड़ी के पुतले हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कैसे चलाया जा सकता है?
इस बात को समझने के लिए हमें उस समय के प्राचीन मानसिकता के भीतर जाना होगा। डॉक्टर ओसवाल्ट गहराई से समझाते हैं कि प्राचीन काल में वे मूर्तियां सिर्फ पुतले नहीं थी।
तो वे क्या थी?
वे असल में ब्रह्मांड की प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, चंद्रमा, बारिश, ऋतुओं और तूफानों का मानवीकरण थी।
ओ, मतलब वे प्रकृति की ताकतों को ही देवता मानते थे।
बिल्कुल। मूर्ति पूजक समाज का ये मानना था कि ये प्राकृतिक शक्तियां ही दुनिया चलाती हैं। लेकिन परमेश्वर अदालत में उन मूर्तियों से एक बहुत ही विशेष सवाल पूछते हैं। तुम सच में भगवान हो तो मुझे भविष्य बताओ, या फिर ये समझाओ कि ये दुनिया कहाँ से आई है और इसका अंत क्या होगा।
और जाहिर है मूर्तियां या प्राकृतिक शक्तियां ऐसा नहीं कर सकती।
नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए प्रकृति का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। प्रकृति बस एक गोल चक्र में घूमती है।
हाँ, जैसे सर्दियां आती हैं, फिर गर्मियां आती हैं,
बीज बोया जाता है, फसल कटती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये बस एक अंधीन चक्र है। डॉक्टर ओसवाल्ट यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प समानांतर खींचते हैं।
क्या समानांतर?
वे बताते हैं कि प्राचीन मूर्ति पूजकों और आज के आधुनिक समाज के एक बड़े हिस्से की सोच में बहुत समानता है।
अच्छा, आधुनिक समाज की सोच भी वैसी ही है?
हाँ, आज भी एक विचारधारा है जो मानती है कि हम कहीं से नहीं आए हैं और हम कहीं नहीं जा रहे हैं।
मतलब सब कुछ बस एक रैंडम घटना है।
बिल्कुल। उनका मानना है कि जीवन बस एक इत्तेफाक है और इतिहास एक अंधी प्रक्रिया है जिसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है।
इस ब्रह्मांड के घेरे के अंदर कैद है अगर वो खुद प्रकृति का ही एक हिस्सा है, तो वो ये कैसे बता सकती है कि इस पूरे ब्रह्मांड का भविष्य क्या है?
एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने।
भविष्य बताने के लिए तो आपको समय और स्थान की सीमाओं से बाहर होना पड़ेगा ना?
बिल्कुल सही। केवल वो सत्ता जो इस ब्रह्मांड की सीमाओं से बाहर है, जो निर्माता है, वही ये बता सकती है कि ये दुनिया कहाँ जा रही है और इसका अंत क्या होगा।
और स्रोत के अनुसार परमेश्वर ये साबित भी करते हैं।
हाँ, परमेश्वर केवल ये दावा नहीं करते बल्कि इसे साबित भी करते हैं। डॉक्टर ओसवाल्ट बताते हैं कि ग्रंथ में परमेश्वर ने 701 ईसा पूर्व में ही ये सटीक भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में बाबुल का निर्वासन होगा।
रुकावट के लिए माफी, लेकिन क्या स्रोत ये कह रहा है कि जो घटना अभी घटी भी नहीं है उसकी भविष्यवाणी दशकों पहले कर दी गई थी?
केवल दशकों पहले नहीं, डॉक्टर ओसवाल्ट के विश्लेषण के अनुसार ग्रंथ में परमेश्वर ने 150 साल पहले ही एक फारसी राजा कुसरू का नाम लेकर घोषणा कर दी थी।
कुसरू मतलब साइरस?
हाँ, साइरस। उन्होंने 150 साल पहले ही बता दिया था कि भविष्य में वो आएगा और इसराइल के लोगों को बाबुल की कैद से छुड़ाएगा।
ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब ये ऐसा ही हुआ कि आज कोई व्यक्ति बैठकर 150 साल बाद आने वाले किसी नेता का नाम, उसकी नीतियां और उसका काम बिल्कुल सटीक बता दे, जबकि वो नेता अभी पैदा भी नहीं हुआ है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर ओसवाल्ट स्पष्ट करते हैं कि इस सटीकता का उद्देश्य लोगों को कोई जादू या चमत्कार दिखाना नहीं था।
तो फिर इसका उद्देश्य क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य ये साबित करना था कि इतिहास कोई अंधा और गोल गोल घूमने वाला चक्र नहीं है। इतिहास एक सीधी रेखा में, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहा है,
जिसे कोई कंट्रोल कर रहा है।
हाँ, जिसे एक बाहरी उद्देश्यपूर्ण निर्माता द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। मूर्तियों और निर्माता के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने ये साबित कर दिया है कि इतिहास उनके नियंत्रण में है, तो सवाल उठता है कि वो दुनिया को बचाने का या उस वादे को पूरा करने का काम कैसे करेंगे।
और यही पर स्रोत हमें यशाया की किताब के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की तरफ ले जाता है।
कौन सा रहस्य?
दो अलग अलग सेवकों का रहस्य।
दो सेवक, ये थोड़ा जटिल लग रहा है।
यह हिस्सा इस पूरे ग्रंथ का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर ऑसवाल्ड बताते हैं कि यशाया के इन अध्यायों में दो अलग अलग सेवकों का जिक्र आता है और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं।
तो पहला सेवक कौन है?
पहला सेवक खुद इसराइल का राष्ट्र है। ग्रंथ में इस सेवक को सारी सुरक्षा, देखभाल और फायदे मिलते हैं। परमेश्वर उसे आश्वस्त करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा।
फिर तो उसे बहुत आभारी होना चाहिए।
होना तो चाहिए, लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ड बताते हैं कि इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद इस पहले सेवक को अंधा और बहरा कहा गया है।
अंधा और बहरा क्यों? क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है?
क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें ब्रह्मांडीय सच्चाई दिखाई नहीं दे रही थी।
मतलब वे सिर्फ अपनी परेशानी देख रहे थे।
हाँ, उन्हें लग रहा था कि वे पीड़ित हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा थे। वे अपनी भूमिका निभाने में पूरी तरह विफल रहे थे।
और यहीं पर ग्रंथ में एक दूसरे सेवक का प्रवेश होता है।
बिल्कुल।
और ये दूसरा सेवक कौन है? क्या इसे भी पहले सेवक जैसी सुविधाएं मिलती हैं?
नहीं, यही तो रहस्य है। ये एक अनाम उद्धारकर्ता है और इस दूसरे सेवक के लिए किसी भी तरह के व्यक्तिगत फायदे, सुरक्षा या आश्वासन का कोई जिक्र नहीं है।
तो फिर उसके पास क्या है?
उसके पास केवल एक मिशन है और डॉक्टर ऑसवाल्ड के अनुसार वो मिशन है पूरी दुनिया में मिशपाट लाना।
मिशपाट, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। क्या स्रोत में इसका कोई स्पष्ट अर्थ दिया गया है?
हाँ, मिशपाट एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिब्रू शब्द है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ अदालती या कानूनी न्याय समझ लेते हैं, जैसे किसी अपराधी को सजा देना।
हाँ, न्याय सुनकर तो अदालत ही दिमाग में आती है।
लेकिन डॉक्टर ऑसवाल्ड इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। मिशपाट का मतलब है ईश्वरीय व्यवस्था।
ईश्वरीय व्यवस्था? इसे थोड़ा और आसान करेंगे।
इसका मतलब है दुनिया को उस स्थिति में वापस लाना जैसी उसे असल में होना चाहिए। जब समाज में ताकतवर लोग कमजोरों की रक्षा करें, जब कोई शोषण ना हो और जब दुनिया में सब कुछ अपने सही और संतुलित स्थान पर आ जाए।
ये तो बहुत ही व्यापक सोच है,
है ना? ये अनाम सेवक किसी पुरानी टूटी हुई व्यवस्था को सिर्फ रिपेयर नहीं करेगा, बल्कि वो उस पुरानी टूटी हुई वाचा यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट की भरपाई करके एक बिल्कुल नई वाचा स्थापित करेगा।
इसे समझने के लिए हम किसी भी टीम स्पोर्ट जैसे क्रिकेट या फुटबॉल की उपमा ले सकते हैं।
हाँ, बताइए कैसे।
देखिए, कल्पना कीजिए कि टीम में एक ऐसा स्टार खिलाड़ी है जिसे टीम का सारा सपोर्ट मिलता है, सबसे बेहतरीन स्पॉन्सरशिप मिलती है, लेकिन जब भी वो मैदान पर उतरता है तो वो बार बार गलतियां करता है।
जो कि पहला सेवक है।
बिल्कुल। वो खेल की रणनीति को समझ ही नहीं पाता, जैसे वो सच में अंधा और बहरा हो। लेकिन फिर एक दूसरा खिलाड़ी मैदान में आता है,
अनाम सेवक।
हाँ, उसे कोई खास सुविधा नहीं दी जाती, ना ही स्टेडियम में उसके नाम के जयकारे लगते हैं, लेकिन उसके पास एक विजन है।
सही कहा।
वो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के पूरी टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाता है और न सिर्फ खेल को बचाता है बल्कि खेल खेलने का पूरा तरीका उसके नियम ही बदल देता है।
वाओ, इस उपमा से वो बात बहुत स्पष्ट हो जाती है जो डॉक्टर ऑसवाल्ड कहना चाहते हैं। वो अनाम सेवक बिना किसी भव्यता के शांति से एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय बदलाव लाता है।
लेकिन एक सवाल और उठता है, अगर सृष्टिकर्ता के काम करने का तरीका इतना अप्रत्याशित है कि वो किसी बॉक्स में नहीं समा सकता, तो फिर ये अनाम सेवक ये सब करेगा कैसे?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है,
क्योंकि इंसान को तो नियम, फॉर्मूले और भव्य चमत्कार पसंद है ना। हम चाहते हैं कि निर्माता उसी फॉर्मूले पर चले जो हमारी समझ में आता हो।
यही तो इंसानी फितरत है, हम हमेशा चमत्कार खोजते हैं। और डॉक्टर ऑसवाल्ड यशाया के अध्याय 43 से एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं।
कौन सा उदाहरण?
वे बताते हैं कि भगवान लोगों को उनके पुराने इतिहास की याद दिलाते हैं, कैसे मिस्र से निकालते समय एक्सोडस के दौरान उनके लिए लाल सागर को दो भागों में बांट दिया गया था,
जो कि एक बहुत ही भव्य चमत्कार था।
बिल्कुल। तो उस समय के लोग निर्वासन में बैठकर ठीक उसी तरह के एक और भव्य चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई नया समुद्र बंटेगा।
हाँ, वे उसी पैटर्न की उम्मीद कर रहे थे।
लेकिन ग्रंथ में तुरंत बाद भगवान कहते हैं, उन पुरानी बातों को याद मत करो, उन पर विचार मत करो, देखो मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ।
ये तो वैसे ही हुआ जैसे किसी बड़े फिल्म निर्देशक ने एक ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म बनाई हो।
हाँ, और फिर
दर्शक सीक्वल देखने जाते हैं इस उम्मीद में कि इस बार भी वैसा ही एक्शन देखने को मिलेगा और भी बड़े धमाके होंगे। लेकिन निर्देशक अचानक से एक गहरी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बना देता है।
बिल्कुल सटीक।
दर्शक हैरान रह जाते क्योंकि वे पुरानी फिल्म के फॉर्मूले की उम्मीद कर रहे थे।
और यहीं पर हम इंसान गलती करते हैं, हम भगवान को एक बॉक्स में रखना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमेशा हमारी उम्मीदों और हमारे बनाए हुए धार्मिक या वैचारिक नियमों के अनुसार काम करेंगे,
जो कि कभी होता नहीं है।
सही बात है, लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई इजरायली योद्धा आएगा या कोई प्राकृतिक चमत्कार होगा, लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड याद दिलाते हैं कि भगवान ने क्या किया।
उन्होंने क्या किया?
उन्होंने लोगों को बचाने के लिए एक फारसी और मूर्ति पूजक राजा कुसरू का इस्तेमाल किया।
एक ऐसा शासक जो इसराइल के भगवान को जानता तक नहीं था।
बिल्कुल, डॉक्टर ओसवाल्ड के स्रोत से एक बहुत ही गहरी पंक्ति उभर कर आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, भगवान हमेशा सुसंगत होते हैं लेकिन वे कभी भी पूर्वानुमानित नहीं होते।
सुसंगत लेकिन कभी पूर्वानुमानित नहीं, ये लाइन सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।
बिल्कुल,
मतलब उनका चरित्र, उनका न्याय और उनका अनुग्रह हमेशा एक सा रहता है, लेकिन उनके काम करने का तरीका हमारी सोच से बहुत आगे होता है।
एकदम सही, इतिहास में उनके काम करने के तरीके कभी भी इंसान के बनाए हुए पैटर्न में फिट नहीं बैठते।
तो इस सब का मतलब क्या है?
मतलब इंसान की भूमिका को लेकर।
हाँ, अगर कोई बड़ी सत्ता, कोई ब्रह्मांडीय निर्माता अपने अनोखे और अप्रत्याशित तरीके से काम कर रहा है, तो इस पूरी योजना में हम इंसानों की क्या भूमिका है? क्या उन्हें बस बैठकर इंतजार करना था या सिर्फ धार्मिक कर्मकांड और बलिदान करते रहने थे?
ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और यहीं पर धार्मिक कर्मकांड और सच्चे अनुग्रह के बीच का सीधा टकराव सामने आता है।
अच्छा।
स्रोत के अनुसार भगवान कहते हैं कि इस अप्रत्याशित योजना में लोगों की भूमिका उनके गवाह बनने की है।
लेकिन डॉक्टर ओसवाल्ड स्पष्ट करते हैं कि यहाँ गवाह बनने का मतलब वो नहीं है जो अक्सर लोग समझ लेते हैं।
हाँ, क्योंकि गवाह बनने का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान सड़क पर खड़े होकर दूसरों का कॉलर पकड़े और उन पर जबरदस्ती अपने विचार थोपने लगे।
बिल्कुल नहीं,
किसी को बहस में हराना कोई गवाही देना थोड़ी है।
एकदम सही, डॉक्टर ओसवाल्ड इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण देते हैं।
क्या उदाहरण दिया है उन्होंने? वे स्रोत में पापुआ न्यू गिनी की एक बहुत ही खूंखार जनजाति का जिक्र करते हैं।
खूंखार जनजाति?
हाँ, जब उस जनजाति के लोगों के जीवन में सच्चाई का प्रवेश हुआ तो उन्होंने आसपास के गांवों में जाकर लंबे चौड़े उपदेश नहीं दिए।
तो उन्होंने क्या किया?
इसके बजाय उनका अपना जीवन, उनका आपसी व्यवहार इतना बदल गया कि उनके कट्टर दुश्मन भी ये देखकर हैरान रह गए।
हो, मतलब उनका काम ही बोल रहा था।
बिल्कुल, दुनिया उनके जीवन में आए उस बदलाव को देखकर खुद सच्चाई मानने पर मजबूर हो गई। सच्ची गवाही का मतलब है अपने जीवन और चरित्र में ऐसा बदलाव लाना जिसे नजरअंदाज करना दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाए।
ये सच में एक बहुत ही गहरा प्रभाव है। लेकिन स्रोत के अनुसार निर्वासन के समय इसराइल के लोग क्या कर रहे थे? क्या वे इस तरह की गवाही दे रहे थे?
नहीं, डॉक्टर ओसवाल्ड बताते हैं कि वे बिल्कुल इसके उलट कर रहे थे।
उलट कर रहे थे? मतलब कैसे?
वे लगातार बलिदान चढ़ा रहे थे, धार्मिक कर्मकांड पूरे कर रहे थे, लेकिन ये सब बिना किसी सच्चे मन या अंदरूनी बदलाव के हो रहा था।
हाँ, मतलब वे इसे एक वेंडिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे।
वेंडिंग मशीन?
हाँ, अगर देखा जाए तो आज के आधुनिक दौर में भी ऐसा बहुत होता है। इंसान सोचता है कि उसने नैतिकता, दान पुण्य या किसी धार्मिक अनुष्ठान का एक सिक्का इस ब्रह्मांडीय वेंडिंग मशीन में डाला और बदले में उसे भगवान से मनचाहा फल या अपनी गलतियों की माफी मिल जाएगी।
ये तो बहुत ही सटीक उपमा है।
है ना, एक तरह का सौदा हो गया ये तो। पाप करो, फिर बलि चढ़ाकर या कोई अनुष्ठान करके अपना खाता साफ कर लो।
और यही वो मानसिकता है जिसकी ग्रंथ कड़ी आलोचना करता है। डॉक्टर ओसवाल्ड यशाया के अध्याय 43 से बताते हैं कि भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस तरह के खोखले कर्मकांडों ने उन्हें खुश नहीं किया है,
बल्कि उन्हें नाराज किया होगा।
नाराज से ज्यादा, इंसानों के पापों और उनके इस लेन देन वाले व्यावसायिक रवैये ने भगवान को थका दिया है।
थका दिया है?
हाँ, ग्रंथ बहुत स्पष्ट है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को इसलिए क्षमा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने बलिदानों से मुझे खुश किया है या तुमने अपने किसी कर्म से इस क्षमा को कमा लिया है।
तो फिर आधार क्या है? अगर इंसान के कर्म नहीं तो क्या है?
आधार सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह है, यानी ग्रेस। भगवान कहते हैं कि मैं इसे इसलिए क्षमा कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अनुग्रह है,
बिना किसी शर्त के।
बिल्कुल, डॉक्टर ओसवाल्ड समझाते हैं कि अनुग्रह कोई लेन देन या व्यापार नहीं है, यह किसी कर्मकांड से खरीदा नहीं जा सकता।
मतलब आप इसे कमा नहीं सकते।
एकदम सही, यह एक तरफा बिना शर्त दिया जाने वाला उपहार है जो केवल देने वाले के चरित्र पर निर्भर करता है, न कि लेने वाले की योग्यता पर।
ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अनुग्रह को किसी फॉर्मूले या वेंडिंग मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल नहीं।
तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटे तो हमने कुछ बहुत ही बुनियादी और पुरानी धारणाओं को टूटते हुए देखा है।
हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने।
हाँ, हमने देखा कि जो आग तबाही जैसी लगती है वो असल में शुद्ध करने वाली भट्टी हो सकती है। हमने ये भी समझा कि जो शक्तियां या मूर्तियां खुद प्रकृति के चक्र में फंसी हैं वे भविष्य नहीं बता सकती।
सही कहा।
हमने उन दो सेवकों की कहानी देखी जहां असली ब्रह्मांडीय बदलाव वो लाता है जो कोई श्रेय नहीं लेता। और सबसे बढ़कर हमने देखा कि निर्माता हमेशा कुछ नया करता है और उसे इंसानी उम्मीदों या धार्मिक कर्मकांडों के बॉक्स में कैद नहीं किया जा सकता।
ये एक बहुत ही सटीक सारांश है। अंततः डॉक्टर ऑसवर्ल्ड का विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ कोई व्यावसायिक लेन देन नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल।
असली मिशप्राट और बदलाव भीतर से आना चाहिए, जो उस अप्रत्याशित अनुग्रह की पहचान करने से शुरू होता है।
इस चर्चा को खत्म करते हुए हम उसी सुनार की आग वाले विचार पर वापस लौटते हैं जिससे हमने आज शुरुआत की थी।
हाँ, वो एक बहुत गहरा विचार था।
अगर परमेश्वर या ये ब्रह्मांड हमेशा कुछ नया कर रहा है और उसे किसी भी पूर्वानुमानित बॉक्स या फॉर्मूले में नहीं रखा जा सकता,
तो इंसान को क्या करना चाहिए?
यही सोचने वाली बात है। तो आज हम अपने जीवन में किन पुरानी धारणाओं या संरचनाओं से चिपके हुए हैं? क्या हमारी अपनी बनाई हुई उम्मीदें, हमारे फॉर्मूले हमें उस अप्रत्याशित कृपा और सच्चाई को देखने से रोक रहे हैं जो ठीक इसी पल शायद एक बहुत ही मुश्किल या दर्दनाक अनुभव के रूप में हमारे सामने प्रकट होने की और हमें सोने की तरह शुद्ध करने की कोशिश कर रही है?
ये वास्तव में आत्मनिरीक्षण करने वाला एक बहुत गहरा सवाल है। ये किसी भी इंसान को पुरानी चीजों को छोड़कर नई संभावनाओं के लिए खुला रहने की चुनौती देता है।
बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। विचार करते रहिए।